प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 7 जून 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं निर्भय कुमार जो गया बिहार से हैं, कृष्ण कांत गोस्वामी आप अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, चंचल कुमार आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, राजेश कुमार चावड़ा आप शाजापुर मध्य प्रदेश से हैं, सुमित भट्टी नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं और मुकेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो निर्भय, कृष्णकांत, चंचल, राजेश, सुमित और मुकेश आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही मैं आप सबकी ओर से एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से अशोक राणा को बधाई दे रहा हूं जो चंदन चौकी लखनऊ से हैं, लखीमपुर से हैं, लखीमपुर खेरी से, जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के पीसीएस का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो अशोक इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हम सब की तरफ से आपके मेंस और इंटरव्यू की सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स अब मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर आता हूं। कल मैंने लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आप लोगों से मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर के बारे में बात की थी। पता नहीं मेरी बात आप लोगों को कितनी विश्वसनीय लगी और कितनी विश्वसनीय के सबसे बड़ी चीज उससे भी बड़ी चीज होती है कि अनुकरणीय लगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि जो जीवन की सफलता के जो रहस्य होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो कोई बहुत कठिन नहीं होते। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये अगर मैं इन सब के बारे में आप लोगों से चर्चा नहीं भी करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं। सच बताइए, क्या आप सब इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं? क्योंकि हमारी जो पारिवारिक संरचना है, हमारे जो संस्कार हैं, तो बचपन से ही हम इन सब चीजों को सुनते, समझते, देखते, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि जानते, समझते, सुनते हुए भी हम इन्हें अपने अनुकरण में नहीं ला पाते, हम इसे अपने आचरण में शामिल नहीं कर पाते। और मित्रों जो बातें आचरण में न आ पाए, जबकि वो आचरण में आनी चाहिए, आने लायक हैं, तो फिर जानने न जानने का भी कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन इसके साथ ही मुझे मित्रों ये भी लगता है कि यदि रोज रोज कोई बात कही जाए तो पूरी तरह से तो चीजें अंदर नहीं समाती, लेकिन कुछ न कुछ तो फिर चीजें अंदर जाती भी चली जाती हैं, धीरे धीरे वो विकसित होती रहती हैं, तो कुछ तो असर पड़ता ही है। तो सच पूछे तो इसी भरोसे और विश्वास के साथ मैं खासकर लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ इस तरह की बातें आप लोगों से शेयर कर लिया करता हूं। और आज मैं इसके अंतर्गत जिस टॉपिक पर शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों से, वो है सेंसिटिविटी। एक स्टूडेंट ने सेंसिटिविटी के बारे में भी जानना चाहा था। उनकी समस्या ये थी कि वो अपने आप को बहुत अधिक सेंसिटिविटी मान रहे हैं, कि उनमें बहुत अधिक भावुकता है या बहुत अतिरिक्त संवेदनशीलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सही है या गलत है, इस तरह की समस्याएं उनके सामने थी। तो मित्रों आज मैं इस सेंसिटिविटी पर आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि चाहे यह विषय हो सेंसिटिविटी का, चाहे इससे पहले हमने अपेक्षा वाले विषय पर बात की थी, चाहे और भी कोई टॉपिक हो, मुझे सबसे ज्यादा जरूरी यह बात लगती है कि हम उसकी सही स्थिति को समझें कि वो वास्तव में है क्या। क्या वो वास्तव, जैसे अगर हम सेंसिटिविटी की बात करें, तो क्या वो वाकई सेंसिटिविटी है या कहीं और कुछ दूसरा तो नहीं है। जैसे हम टेंशन की बात करते हैं, तो आज देखिए आजकल बातचीत में हो गई है टेंशन, अच्छा तो टेंशन मत ले, अच्छा कोई टेंशन की बात नहीं है, जबकि टेंशन एक बड़ी चीज होती है। टेंशन तो वो चीज होती है जिसमें हमारे जो दिमाग की जो नसें हैं वो कस जाएं, टेंस में आ जाएं, तन जाएं, और वो छोटी मोटी चीजों में तो तनती नहीं है, लेकिन अब टेंशन का वो प्रयोग जो है वो छोटी छोटी चिंताओं के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए उपयोग में आने लगा है। तो मुझे अब ये लगने लगा है क्योंकि शब्दों पर हमारी पकड़ कमजोर होती जा रही है, उनके अर्थों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, शब्दों के पर्यायवाचियों के भी जो थोड़े शेड्स होते हैं और उनमें जो बारीक अंतर हो रहे हैं, होते हैं, उन बारीक अंतरों को नहीं पकड़ पाते हैं, इसीलिए इन सब चीजों को मिला जुला करके एक नाम दे देते हैं और फिर हर के लिए उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं, और पहली गड़बड़ी तो हमारी यही हो जाती है। अगर मूलभूत समझ ही गड़बड़ा गई तो आप सोच करके देखिए कि फिर उसका इलाज कैसे सही हो सकता है। तो मित्रों, इसलिए मुझे लगता है कि हमें सेंसिटिविटी को भी समझना चाहिए कि जिसे मैं अपनी सेंसिटिविटी कह रहा हूं, अतिरिक्त संवेदनशीलता कह रहा हूं या अतिरिक्त भावुकता कह रहा हूं, वो क्या वास्तव में अतिरिक्त भावुकता ही है या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कुछ और है। वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं ये महसूस करने लगा हूं कि जैसे जैसे ये भौतिकता बढ़ती चली जा रही है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशंस कम होते जा रहे हैं, है ना, अब तो आपके सामने जो कुछ भी है, व्हाट्सएप है, एसएमएस है, इसके जरिए दोस्ती हो रही है, एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है आपके लिए, एक आभासी दुनिया है, उसी में दोस्ती हो रही है, उसी में दुश्मनी हो रही है, उसी में प्रशंसा हो रही है, उसी में आलोचनाएं हो रही हैं, जबकि जानते हैं हम आमने सामने एक दूसरे को कोई भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अपने को अतिरिक्त भावुक कहना या बहुत अधिक संवेदनशील कहना शायद एक गर्व की बात भी होती है, अच्छा महसूस होता है कि नहीं नहीं मैं मशीन नहीं बना हूं, मैं इतना ज्यादा तार्किक भी नहीं हूं, मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूं। तो भावुकता एक तरीके का एडजेक्टिव बन गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में देखता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में जब एक्टर और एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज छपते हैं या जब चैनल्स पर इंटरव्यू आते हैं तो उसमें ज्यादातर लोग अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत ही सेंसिटिव हूं, और चूंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूं इसलिए मैं सही निर्णय नहीं ले पाता, लोग मुझे बेवकूफ बना देते हैं, मैं चक्करों में पड़ जाता हूं, उनकी बातों में आ जाता हूं, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो मित्रों, यहां समझना होगा कि जिसे हम सेंसिटिविटी कह रहे हैं वो वाकई में सेंसिटिविटी है या और कुछ है। जैसे आप इनके बरक्स रख करके इसको देखेंगे, मतलब किसके समानांतर इसको रख करके आपको देखना चाहिए, किन किन के बीच में अंतर करना चाहिए, मैं थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग इन्हें समझने लगेंगे ना तब आपको अपनी जो बीमारी है या जो विशेषता है या जो कमजोरी है, आप इसे जो कुछ भी माने, तो उस पर आपकी सही पकड़ बनेगी, और जब सही पकड़ बनेगी तो तभी आप सही इस्तेमाल कर सकेंगे। आप दूध को पानी समझकर इस्तेमाल कीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक इसी तरह से पानी को दूध समझ करके इस्तेमाल कीजिए या तेल समझ कर इस्तेमाल कीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि वैसे अब अगर बहुत लार्ज लेवल पर अगर हम डिवीजन देखें तो ये सब के सब लिक्विड है, ये सब लिक्विड फैमिली के हैं, लेकिन एक ही तो नहीं है, तो ये समझ होनी चाहिए। देखिए, जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो वैसे तो सामान्य तौर पर सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चीज है, भावुकता ईश्वर का वरदान है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें भावुकता ही नहीं रह जाएगी फिर उसमें मानवता भी कैसे रह जाएगी, मनुष्यता भी कैसे रह जाएगी, कहीं ना कहीं मुझे तो मनुष्यता का पर्याय ही भावुकता लगती है। तर्क और भावना ये दोनों ही मिलकर के मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अदरवाइज वो और रोबोट दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। रोबोट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसके पास भी है, हो सकता है कि उसका इंटेलिजेंस, हो सकता है क्या हो चुका है कि मनुष्य के इंटेलिजेंस से बहुत आगे हो, मतलब उसका कैलकुलेशन, उसके परफेक्शन देखिए कि कितने कितने हाई लेवल के हैं, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो माइंड तो उसके पास है, इंटेलिजेंस तो उसके पास है, रोबोट के पास भी, लेकिन उसके पास जो नहीं है वो फीलिंग नहीं है, है ना, वो भावनाएं नहीं है, क्योंकि फीलिंग तो भावनाओं से जुड़ी हुई है। मैं किसी चीज की व्याख्या कर सकता हूं, ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लोग चकित रह सकते हैं, लेकिन उसे मैं महसूस करूं ये जरूरी नहीं है। मैं बता सकता हूं कि इंद्रधनुष में ये 7 रंग हैं और इंद्रधनुष क्यों बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, कितना इसका ड्यूरेशन है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बता सकता हूं, उसका मैं विशेषज्ञ हो सकता हूं। लेकिन हो सकता है कि मुझे इंद्रधनुष में कोई सौंदर्य का बोध ही ना होता हो, इंद्रधनुष को देख करके मेरा मन इंद्रधनुषीय न बन पाए, वो खिलता ही नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो मनुष्य होने का जो सच पूछे तो जो प्रमाण है वो उसकी संवेदनशीलता ही है, और यही संवेदनशीलता उसे दूसरों से जुड़ती है। और यदि संवेदनशीलता नहीं होगी तो याद रखिए समाज भी नहीं होगा, क्योंकि समाज का मतलब ही है एक से अधिक लोगों का आपस में जुड़ना। नो डाउट कि यह जो जुड़ना होता है कहीं ना कहीं उसके पीछे एक स्वार्थ की भावना होती है, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है, वो एक बात तो होती है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो समाज को जो गंभीर रूप देते हैं, जो समाज को गहरा बनाते हैं, वो संवेदना होती है। पड़ोसियों से हम उसी तरह से व्यवहार नहीं करते जिस तरीके से हम अपने कॉलोनी के दूसरे लोगों से करते हैं। पड़ोसी हमारे लिए थोड़ा सा अधिक संवेदनशील बन जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज उसे हमारी जरूरत है लेकिन आगे भी हमें उसकी जरूरत हो सकती है, तो ये तो स्वार्थ हो गया। लेकिन मनुष्य होते होने के नाते हम संवेदनशील भी होते हैं, और मनुष्य की संवेदनशीलता तो इतने हाई लेवल की होती है कि आप देखते हैं कि वो पशु पक्षियों तक व्यापक हो जाती है, वो यहां तक कि पेड़ पौधों तक में व्यापकता उसकी हो जाती है। तभी तो हम पेड़ों की तक की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, हम उन्हें अपने रिश्तेदार मानने लगते हैं। ग्रामीण जीवन में जाकर के देखिए तो नीम भौजाई बनी हुई है, बरगद दादा बना हुआ है। तो ये हमारी संवेदनशीलता है कि हम उनमें जीवंतता महसूस करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये संवेदनशीलता तो कहीं इतनी तक बढ़ जाती है कि जब कोई दूसरा आपके बारे में कुछ सोच रहा हो तो एक विचित्र किस्म के एक सिस्टम के तहत आपको यहां एहसास हो जाता है कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा है। कोई आने वाला है जबकि उसके आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपको लगने लगता है कि नहीं कोई आने वाला है, और आपको यह भी पता है कि वो आने वाला कौन है। कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि वो सच में आ भी जाता है, जिसे हम पूर्वाभास का नाम देते हैं, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। इसी में आत्मा की आवाज होती है, जिसे अंतःकरण की आवाज भी कहा जाता है। कभी कभी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस भी होती है कि आपको लग रहा है कि ये काम आपको करना चाहिए, ये फायदे का काम है, लेकिन आपका जो अंतःकरण है वो द्वंद्व में फंसा हुआ है, इस बात की आपको इजाजत नहीं दे रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो यह जो इजाजत नहीं देने वाला है ये कौन है? यह संवेदना है, याद रखिए यह संवेदना है। तो आपके जो जनरल स्टडीज के 4th पेपर में जो बहुत सी चीजें हैं, सच पूछे तो उनके केंद्र में यह संवेदना ही है ना। अब जो सेंसिटिविटी जिसे हम कह रहे हैं, जिस समस्या पर हम यहां बात कर रहे हैं, वो समस्या इस संवेदना के होने न होने की नहीं होगी, जहां तक मैं समझता हूं। ये जो समस्या है ये संवेदना के ज्यादा होने की है, मतलब बात बात पर संवेदनशील हो जाने की बात है, बात बात पर भावुक हो जाने की बात है, बात बात पर रोना आ जाने की बात है, दूसरों के दुख दर्द पर जरा सा भी उसने अपना दुख दर्द बयान किया, पता लगा हम इतने भावुक हो गए कि उसके ग्रिप में आ गए, और फिर उसने जो मांगा वो दे दिया, जो कहा वो कर दिया, और बाद में फिर पछता रहे कि ये हमसे क्या हो गया। तो मुझे लगता है कि जो सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम होती है वो यहां होती है। जैसे दोस्तों दांत हमारे, देखिए हमारे दांत ऐसा नहीं है कि वो संवेदनशील नहीं है, वो हम जिस चीज को भी खाते हैं उसको हमारे दांत महसूस करते हैं, हमारे दांत डेड नहीं है, तभी तो उनमें दर्द होता है, लेकिन एक सेंसिटिविटी होती है कि दांत में सेंसिटिविटी आ गई है, तो जब आप कुछ खाएंगे तो कुछ चिनचिनाने सा लगेगा, है ना। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है सेंसोडाइन आप पेस्ट कीजिए, आपको इस तरह की दवाइयां देगा, वो कहता है कि दांत के ऊपर के जो इनामल हैं वो थोड़े से घिस गए, कमजोर हो गए, तो दांत आपके सेंसिटिव हो गए हैं। तो पहले भी सेंसिटिव थे, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वही दांत को दांत बनाता है। अब जो होगी सेंसिटिविटी आ गई, इसका मतलब है कि उसकी उसमें एक्सेस हो गया है, उसको बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, तो इसे हम समस्या कहते हैं, राइट फ्रेंड्स। उसी तरह से जैसे कि 98.4 अगर मेरा टेम्परेचर है तो है, वो बुखार नहीं है, वो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन जब 99 होता है तब टेम्परेचर है, 100 होता है तब टेम्परेचर है। मतलब एक सीमा तक हर चीज सही होती है और उस सीमा के बाद चीजें, वही चीज जो हमारे लिए सही थी वो गलत होने लगती है। तो यहां जो हम प्रॉब्लम जो डिस्कस कर रहे हैं वो गलत होने की सीमा वाली सेंसिटिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके शेष इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, कल बातें करेंगे। अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। दोस्तों कल के AIR न्यूज में काफी चीजें हैं जो सच पूछे तो हम लोगों के बात करने लायक हैं, काफी इश्यूज ऐसे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कह लीजिए सब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए, और मैं आप लोगों से कहना भी चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है इस पर आप लोगों को थोड़ी अच्छी तैयारी रखनी चाहिए। इसे एक तरह से अपने इम्पॉर्टेंट IMP कहते हैं उस टॉपिक में शामिल कर लेना चाहिए, जिसके इस बार की परीक्षा में हो सकता है प्री में भी पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, और मेंस में भी उस पर पूछा जा सकता है, काफी संभावना मुझे लगती है। मित्रों आपने न्यूज में सुना कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर स्विट्जरलैंड पहुंचे तो स्विट्जरलैंड पहुंचने पर आपने देखा होगा कि 2-3 खबरों की लाइनें थी उनके स्विट्जरलैंड पहुंचने पर। जो सबसे बार बार जो दोहराया गया, जो सबसे बार रिपीट किया गया है वह यह है कि स्विट्जरलैंड ने अपनी इस बात के प्रति सहमति दे दी है कि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसको कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसे हम अखबारों में या शॉर्ट फॉर्म में अक्सर पढ़ेंगे NSG, न्यूक्लियर स्टैंड फॉर N, S फॉर सप्लायर, G फॉर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने की स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति मतलब उस तरीके से नहीं दी है, मतलब उसने एक डिक्लेयर किया अपनी पॉलिसी के तहत कि ठीक है भारत को इसका सदस्य बनाया जा सकता है। मैं अभी आपको परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। न्यूज में फिर आपने देखा कि काला धन को लेकर के भी स्विट्जरलैंड ने आश्वासन दिया है कि इस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसे आप टैक्स हैवन के रूप में जानते हैं। ये माना जाता है कि बहुत से देशों का काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा है, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो फिर स्विट्जरलैंड पूछता नहीं है कि आपका कहां से पैसा आया। और उल्टी बात ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो अपने बैंक में पैसा रखता है और उसके बदले में आपसे वो रखने का, जैसे लॉकर वाले के लिए बैंक लेता है ना, लॉकर आप लेते हैं, लॉकर में लोग अपने गोल्ड वगैरह रखते हैं, गहने रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो वो लॉकर के आपसे किराया लेता है लॉकर का। ठीक उसी तरीके से ये पैसा रखने का ये बैंक आपसे सुरक्षा का के लिए वो चार्ज करता है। तो टैक्स हेवन कंट्री माना जाता है, तो काला धन के ऊपर स्विट्जरलैंड ने आश्वासन दिया है और एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी की जो सरकार है वो काला धन को लेकर के कुछ ज्यादा ही सतर्क है और उसके खिलाफ उसने एक तरीके से जंग सी शुरू छेड़ रखी है। कुछ दिनों पहले ही अभी 1 तारीख को गवर्नमेंट ने एक प्लान डिक्लेयर किया 3-4 महीने के लिए कि आप अपना पैसा डिक्लेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास काला धन है उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा टैक्स के रूप में जमा कर दीजिए, फिर आपका वो जो पैसा है वो व्हाइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट्स खासकर स्विट्जरलैंड के संबंध में इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि जो ये जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें जान लें, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा जो बेसिक है, इसके बाद फिर आप किसी टॉपिक पे किसी किताब से मैगजीन से आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों एक आपने सुना होगा NPT, न्यूक्लियर NPT प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ये इसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि NPT। ये जो परमाणु अप्रसार संधि है मित्रों 1965 में ये शुरू हुआ था और इस पर अब तक ये माना जाता है कि लगभग 189 या कुछ कंट्री ने साइन किए हैं परमाणु अप्रसार संधि। देखिए बहुत ही क्लियर कट इसमें इसका अर्थ है, एक संस्था है, एक संधि है, इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु के हथियारों के प्रसार को रोकना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में परमाणु की विभीषिका देखी जा चुकी थी नागासाकी हिरोशिमा में। तो किस तरीके से परमाणु हथियारों के प्रचार प्रसार को रोका जाए, लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, राइट। 1968 में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने शुरू हुए, अभी तक लगभग 189 कंट्रीज इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन चार देश ऐसे हैं जो सॉवरेन कंट्री हैं, जो प्रभुता संपन्न है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। और मजेदार बात है कि इन चार देशों में एक देश है भारत और दूसरा देश है भारत का पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, दो और देश हैं इजराइल और उत्तरी कोरिया, इन लोगों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर आपको यह भी जानना होगा कि जो अभी जिनके पास आणविक हथियार हैं वो पांच देश हैं जो बड़े जानते हैं आप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इनके पास परमाणु हथियार हैं, राइट। अब बट नेचुरल है कि परमाणु अप्रसार संधि पर जो देश दस्तखत नहीं कर रहे हैं, अब उनको क्या किया जाए या इसके सप्लाई को कैसे रोका जाए। तो एक तो आपने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो आप बाध्य हो जाते हैं कि अब आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, जो कुछ भी है वो उसके जो और भी जो उसके जो पॉइंट्स हैं उनके प्रति आपकी वचनबद्धता हो जाती है। लेकिन दूसरा है दोस्तों, फिर एक ग्रुप बना जो अब परमाणु आणविक ऊर्जा के लिए या आणविक हथियार बनाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और कुछ मटेरियल चाहिए, जैसे यूरेनियम है, थोरियम, ये चाहिए, हर जगह या अवेलेबल नहीं है। तो फिर एक मल्टीनेशनल बॉडी बनी जिसको हम कहते हैं एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो परमाणु के में काम आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी सप्लाई करता है, और ये 1974 में बना यह ग्रुप। अब इस ग्रुप का काम यह है कि यह ग्रुप इस बात का ध्यान रखती है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसका प्रयोग हथियारों के लिए ना हो। देखिए संकट यह है कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है उसका उपयोग दो कई चीजों के लिए हो सकता है, एक तो हथियारों के लिए जिससे इसकी शुरुआत हुई है। भारत जैसा देश क्या करता है, देखिए भारत ने परमाणु परीक्षण किया 74 में, पहली बार परीक्षण किया, फिर जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब दूसरी बार फिर से हमने परमाणु परीक्षण किया। तो परमाणु परीक्षण हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन भारत शुरू से इस बात का आश्वासन देता रहा है कि वह कभी भी परमाणु टेक्नोलॉजी का प्रयोग विध्वंस के लिए नहीं करेगा, हथियार बनाने के लिए नहीं करेगा, वह इसका शांतिपूर्ण उपयोग के लिए करेगा। मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है, एनर्जी के लिए तो उपयोग होता ही है, भारत में परमाणु एनर्जी मतलब परमाणु से एनर्जी पैदा भी की जा रही, हालांकि उसका परसेंटेज बहुत कम है। लगातार ये आश्वासन देता रहा है और इस बात के प्रमाण भी नहीं है कि भारत ने कभी इस तरह का प्रयोग किया हो, राइट। तो अब भारत का ये कहना है कि चूंकि वह शांतिपूर्ण उपयोग में करना चाहता है न्यूक्लियर का, तो उसे सप्लायर ग्रुप का मेंबर बना लिया जाए, राइट। चीन इसका विरोध कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका विरोध कर रहा है, राइट। चीन क्यों विरोध कर रहा है, चीन का कहना यह है कि चूंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इसलिए इसको इसका सदस्य एनएसजी का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए, यह उसका कहना। यह भी आपको मालूम है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, उसके दो तीन बातें कहने को हैं। पहली तो बात यह है कि कुछ लोगों के पास तो इतने हथियार हैं कि अब कोई बनाए या ना बनाए वो चाहे तो दुनिया को कई कई बार ध्वंस कर सकते हैं, तो इसलिए उसका मानना है कि ये जो संधि है ये पक्षपातपूर्ण है कि कुछ लोगों के पास है तो वो उसको नष्ट करने की बात नहीं कर रहा, नए लोग बना नहीं सकते। फिर भारत का यह भी कहना है कि चीन के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार हैं और हमारे साथ चीन के विवाद होते रहते हैं, 1962 प्रमाण है जब उसने हम पर अटैक भी किया है, तो हम उस इस बाध्यता में नहीं आएंगे कि हमारा पड़ोसी के पास तो हमारे पड़ोसी के पास तो हो और हम अपने हाथ कटवा लें। फिर इधर पाकिस्तान की भी वो बात कहता है कि पाकिस्तान भी ने भी तो नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी हस्ताक्षर नहीं किए और पाकिस्तान के साथ हमारे कई बार युद्ध हो चुके हैं, तो चूंकि हम तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में रहती है तो इसीलिए हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये एश्योर करते हैं कि हम परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग या परमाणु टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिर्फ शांति और विकास के लिए करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये संकट है और भारत को अगर इस ग्रुप का सदस्य बना लिया जाता है तो भारत को उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि फिर परमाणु पदार्थों की जो सप्लाई है भारत के लिए वो आसान हो जाएगी बस, और आसान हो जाने के बाद भारत उसका मल्टीपल यूज कर सकेगा। तो भारत अभी लगातार इस कोशिश में है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको अपने पक्ष में भारत लेकर के आए। आपने देखा कि चीन विरोध कर रहा है, अभी हमारे राष्ट्रपति जी जब चीन गए थे तो उसमें भी उन्होंने चीन को समझाने की कोशिश की है कि आपका विरोध सही नहीं है, हमें समझने की कोशिश कीजिए, हम विश्व शांति के समर्थक हैं, हमारे यही ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो अब देखते हैं कि चीन क्या स्टैंड लेता है, लेकिन फिलहाल चीन इसके विरोध में है। तो एक सफलता है कि स्विट्जरलैंड ने अब भारत के पक्ष में अपनी बात कही है। मित्रों, जो दूसरी बड़ी खबर है वो निर्वाचन आयोग की खबर आपने सुनी कि कर्नाटक में अभी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव होने हैं। उसमें आपको मालूम है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वही वोट करते हैं और लगभग मालूम रहता है कि कौन किस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि किसके कितने विधायक हैं विधानसभा में। तो वहां आपने देखा कि कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें धन के लेन देन की बात हो रही है कि आप पैसा, हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप हमारे लिए वोट कीजिए। मित्रों, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। देखिए, लोग कहते तो हैं ही कि इस तरह का पैसों का लेन देन होता रहता है। उत्तराखंड वाले में भी अभी आपने देखा कि जब विश्वास मत प्राप्त करना था उसमें कुछ लोगों की कमी पड़ रही थी विधायकों की, तो वहां भी स्टिंग ऑपरेशन में ये चीजें आई। तो अब निर्वाचन आयोग ने ये सलाह दी है कि ये उसे अधिकार दिया जाना चाहिए निर्वाचन आयोग को कि जहां भी उसे इस तरह की खबर मिलती है कि वहां पैसे का लेन देन हो रहा है तो वह उसे रद्द कर सके। अभी उसके पास वो पावर नहीं है कि हो गए चुनाव को वो रद्द कर सके, तो वो उसके लिए अधिकार मांग रहा है। और धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरह से चुनाव सुधार के तहत नए नए कानून आते चले जा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए, चाहे वो संसद के माध्यम से आए, या निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से भी कुछ चीजें की हैं, जैसे है कि अगर किसी को अपराधी ठहरा दिया गया है तो वो इतने साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, इस तरह की कुछ कम से कम योग्यताओं में निर्धारण हुआ है। लेकिन ये स्लो प्रक्रिया होती है क्योंकि सीधे सीधे राजनीतिक दलों के विरोध में ही उठाया गया कदम है, तो इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी करना होता है मित्रों, करना तो सरकार को ही होता है। लेकिन देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। मित्रों, एक खबर आपने और सुनी जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि जो 30 विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, उसमें अब इजी डूइंग बिजनेस, मतलब जहां व्यापार करना आसान हो, उस इंडेक्स के तहत भारत अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर चाइना है, और खासकर ये जो उसे स्थान मिला है वो ये कि जो एकल खुदरा जो निवेश है, खुदरा, उसके तहत भारत ने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ कानून सरल बनाए हैं, तो उससे अब बिजनेस करना आसान हो गया है। और ये ई कॉमर्स का फील्ड है, और ई कॉमर्स की वजह से भी भारत में इस तरह का व्यापार करना थोड़ा आसान हुआ है। तो ये एक अच्छे लक्षण है, क्योंकि यही माना जाता है कि भारत में बिजनेस करना बहुत बहुत और बहुत कठिन है। लाइसेंस लो, फलाना करो, वो करो, यहां से क्लियरेंस लो, यहां से क्लियरेंस लो, और इसीलिए हमारे यहां बहुत ज्यादा विदेशी निवेश आ भी नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आपको मेक इन इंडिया को साकार करना है तो इजी डूइंग बिजनेस के लेवल पर तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा ही। मित्रों, फिर खबर आपने मथुरा कांड के बारे में भी सुना, जहां राम वृक्ष यादव जहां मारे गए और एक पूरा का पूरा एरिया था उन लोगों ने घेर रखा था, वो सारी घटनाएं आप लोगों को मालूम है। उसको लेकर के अब बहुत विवाद की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण था, प्रशासन क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, बल्कि राज्य सरकार ने अभी जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, आपने न्यूज में सुना कि उसमें उसने माना है कि यहां पुलिस अनुमान लगाने में अक्षम रही है, असफल रही है, इस तरह की बात राज्य सरकार ने कही है। तो मित्रों, ये एक घटना है, और मैंने कल भी शायद आप लोगों को बताया था कि बस आप इस घटना को देखते रहिए और इसमें से क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं, कहां हमारी किस तरह की अक्षमता सिद्ध होती है, प्रूफ होती है, बस वो आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि आप इसका उपयोग प्रशासन और राजनीति, व्यवस्था, कानून, इससे रिलेटेड जब प्रश्न आएंगे तो उसमें एक सही तरीके से इनका इस्तेमाल कर सके। तो मित्रों, आकाशवाणी न्यूज के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का जहां तक सवाल है मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ काफी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और अच्छी क्लिपिंग्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं उनके डिटेल में तो जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो दो क्लिपिंग्स हैं उनके बारे में मैं एक बताऊं, स्पेशली आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तो जीएम बीजों को लेकर के है, जो मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जो हमारे पहले प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन रहे हैं, उनका लेख है, ये जरूर आप पढ़िएगा। जीएम फसलों पर प्रश्न पूछे भी जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत में जो जीएम फसलें हैं वो काफी विवाद के केंद्र में है। दूसरी बिजनेस स्टैंडर्ड का दूसरा आर्टिकल है, वो बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। अभी तक आपने पीपी मॉडल का नाम सुना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी, लेकिन इसमें उन्होंने दिया जो नाम दिया पीपी मॉडल का मतलब है पब्लिक पब्लिक मॉडल, मतलब एक ये भी तो हो सकता है कि दो सार्वजनिक संस्थान मिलकर के किसी काम को करें, पब्लिक के साथ में प्राइवेट ही क्यों मिले, पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप पर भी बात अब की जाने लगी है। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, उसे भी आपको पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए उसे बहुत अच्छे तरीके से। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतना ही, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे पास एक मेल आया है मोहिनी रावत का, जिसमें उन्होंने जानना चाहा है कि सर आपने जो आप आईएएस कैसे बनेंगे जो किताब में पढ़ने की जो लिस्ट दी है कि कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, उसमें कुछ दूसरी तरह की किताबों की भी सूची दी है, जबकि आपने जो अभी जो प्रोग्राम यूट्यूब पर भी जो अवेलेबल है सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ना चाहिए जो पार्ट 3 आया, उसमें इसका मेंशन नहीं है। मुझे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग अलग है। किताब में मैं चीजों को बहुत विस्तार के साथ बता रहा हूं, वो आपको सिर्फ एक संदर्भ ग्रंथ की तरह असिस्ट करने वाली किताबें हैं, आप चाहे तो पढ़ें चाहे तो न पढ़ें। लेकिन जो यूट्यूब वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें जो मैंने बात कही है वो किताबों की ही मैं चर्चा करूंगा जो आपको पढ़नी ही चाहिए, है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब जो उस प्रोग्राम में जो मैंने बताया है उसमें तो आप कोई लिबर्टी ले ही नहीं सकते, लेकिन जो किताब में जिन किताबों की मैंने चर्चा की है उनमें आप चाहे तो लिबर्टी ले सकते, टोटली अप टू यू। और उसमें मैंने बकायदे मेंशन किया, उसमें कुछ किताबें हैं कि आपकी समझदारी विकसित करेंगी, कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपकी भाषा को अच्छी करेंगी, है ना, उनका वो आपको टॉपिक की जानकारी नहीं देंगे, है ना, वो आपको असिस्ट करेंगे, वो सहायक किताबें हैं जिन्हें हम सहायक ग्रंथ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो दोनों में कहीं विरोधाभास नहीं है। तो मित्रों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं, जिसमें हैं शांतनु देवनाथ अगरतला से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, रंजन कुमार जामुई बिहार से, खुशबू वार्ष्णेय केवल ठेकरे अहमदाबाद से, बीएस मीना जयपुर से, प्रभात कुमार, संदीप कुमार लखनऊ से, अरुण तेवोतिया गाजियाबाद से, सार्थक शुक्ला रायपुर से, अश्वनी दीवान थाने से, शुभम शर्मा, कुलदीप कुमार पाठक, केशव कुमार तेरेसाल एग्जेंडर लखनऊ से, जितेंद्र चौधरी हाथरस से और रितेश कुमार बेगूसराय बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही यह आज का डीएजी, अभी सिर्फ आप लोग डीएजी भी कहने लगे हैं, डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।